जयो यशोदानन्दन जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरावन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारे यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय जमुना तीरावन चारि जय कुंज बिहारि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jayo Radha Madan Gopal Radha, Madan Gopal Radhe Radhe. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Jayo Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai. Prabhupad, Prabhupad, Jai Jai Prabhupad. Nitai Gaur Haribol, 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 Nitai Gaur Haribol. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivraj Gacharya Ashtotar Shat Sri Srimad His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivraj Gacharya Ashtotar Shat Sri Srimad His Divine Grace Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Shila Prabhupada Ki Ananda Goti Vaishnav Vrinda Ki Namacharya Shila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदान श्रीमती तुलसी महारानी की श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की श्री श्री निताय गौरचंद्र की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदी समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय शिशि गुरु गौरांग की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 21। इस अध्याय का शीर्षक है गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक 18। हंतायम अद्रिरबला हरिदासवर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै
Thank you.
Hanta, O Ayam, Yah, Adri, Parvat, Abala, He Sakhiyon, Haridasavarya, भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयोर उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंद मूलय तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सुयवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम ज्ञानतिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधुर जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। सारे भक्तों को अनुरोध है कृपया अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रखो या उसको स्विच ऑफ कर दो, और जो भी माताओं के छोटे बच्चे उनसे अनुरोध है उनको ठीक से संभालिए ताकि कथा में बाधा न हो।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। दूसरी शिक्षा पर हम हैं, गोवर्धन पर्वत से लौल्यम। भगवान गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शा रहे हैं, और ये जो महिमा है गोवर्धन पर्वत की, उनके अंदर भगवान की सेवा करने का जो लौल्यम है, उत्साह। कल ही हम चर्चा कर रहे थे कुछ विद्यार्थियों के साथ कि संसार में हम देखते हैं कई मनुष्य होते हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं, इम्प्रेसिव, और कई होते हैं जो प्रेरणास्पद होते हैं, इंस्पिरेशनल। सो वी लुक फॉर जनरली व्हाट वी गेट इम्प्रेस्ड बाय इन कलयुग, बट स्क्रिप्चर्स टीचर्स व्हाट वी शुड बी इंस्पायर्ड बाय। तो जो इस भौतिक संसार के अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो सब इम्प्रेसिव हैं, उनके अंदर हाँ कुछ पुण्य करने के वजह से ऐसी कलाएं हैं जो कि बहुत प्रभाव डालती हैं मनुष्य समाज के ऊपर, बहुत गहरा प्रभाव होता है उनका। और अक्सर हम देखते हैं कि हम भक्ति के अंदर जो नौसिखिया भक्त हैं, हम भी जो इस भौतिक संसार का ये जो प्रभाव है, माया देवी का ये जो प्रभाव है, इम्प्रेसिवनेस, उसका जब हम एक नमूना देखते हैं किसी भक्त के अंदर, तो हमें लगता है कि वो हमारा इंस्पिरेशन है। मेनी टाइम्स वी मिस्टेक the impressiveness of someone as inspiration, even devotees. तो हाँ, गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल पर्वत है। तो यदि बाह्य रूप से देखा जाए तो उनके अंदर वो impressiveness है, जो वो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर दे रहे हैं, हम ये जो श्लोक इतने रविवारों से ले रहे हैं, मेरे ख्याल से अब तक आपको तात्पर्य और अनुवाद भी कंठस्थ हो गया होगा। कि जो गुफाएं हैं, जो झरने हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके से, तो ये काफी इंप्रेसिव है गोवर्धन पर्वत का ये रूप। आचार्य उससे भी ज्यादा गहराई में जाकर हमें कहते हैं लौल्यम, कि इंस्पिरेशनल। तो कई बार हम देखते हैं कि भक्तों में गुण होते हैं, कलाएं भी होती हैं, परंतु लौल्यम न होने के वजह से उनके अंदर की जो कलाएं हैं वो भक्ति लता को पानी डालने के बजाय उनके अहंकार को पानी डालती। इसलिए जब कोई प्रामाणिक भक्त जिसके अंदर देवताओं के सारे गुण भगवान के द्वारा दिए जाते हैं और उनको जब वो भगवान की सेवा में, जैसे कि गोवर्धन पर्वत, तो वो जो उत्साह है वो एक जो क्वालिटी है लौल्यम की, जो क्वालिटी, वो पहले वो भक्त भगवान को दर्शा कर भगवान को दिखाता है और फिर भगवान उसे शुद्ध करते हैं, उसके सारे इंप्रेसिव इंस्पिरेशनल क्वालिटीज को शुद्ध करते हैं। तो हम एक्सेप्टेंस इसके ऊपर काफी समय से चर्चा कर रहे हैं। समर्पण जो कि लौल्यम का एक लक्षण है, और समर्पण का लक्षण है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तो काफी समय बाद हम इस मुद्दे पर फिर से आए हैं, तो एक रिकैप यदि आपको याद नहीं है तो हमने हमारे पिछले सेटिंग में प्रभु श्री राम की कृपा का यह उदाहरण लिया था कि प्रभु श्री राम की कृपा दो रूप में, उन्होंने दंड के रूप में और इनाम के रूप में, नॉन एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस के ये सारे उदाहरण, ताटक, रावण, अहिल्या और इंद्र। तो आकांक्षाएं या उपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, जब हम स्वयं से कोई उपेक्षा रखते हैं तो होता क्या है कि उसके अंदर हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर। जब हम केवल भक्तों के समुदाय में यही गाना गाते फिरते हैं कि भाई तुम मेरी अपेक्षाओं को तुम पूरा करो, when we expect from others to fulfill our demands, we always are disappointed and frustrated, क्योंकि ये जो शरीर है ये शरीर भी एक दिन हमारे एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करेगा। दूसरे तो छोड़ दीजिए, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो हृदय जिसकी धड़कन चल रही है, ये जो हृदय है यही हमें दगा दे देगा। और शरीर के जितने अंग हैं जिस पर हम भरोसा रखें, जिस अन्न के ऊपर हम भरोसा रखकर खा रहे हैं, वो अन्न हमें धोखा दे देगा कि उस अन्न के वजह से हो सकता है बीमारियां आ जाए हमें। तो इसलिए जब हम अपने असली जो अपना परिचय है सेल्फ, उससे जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सोल, तो उसमें हम हमारी जो खामियां हैं, हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं, वो हमारे सामने हमको समझ में आती है, दिखती है। तो पिछली बार हमने ये कार टेक्निक इसका प्रारंभ किया था। सी स्टैंड्स फॉर चेंज द चेंजेबल, और हमने श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लिया कि श्रील प्रभुपाद वो यदि अमेरिका जाकर अमेरिकन्स और उनकी संस्कृति, उनके सिविलाइजेशन में रहकर चेंज ला सके, तो फिर हम भारत में रहकर भारतीय संस्कृति में पले बढ़े, और यदि हम ये कहें आई कैनॉट चेंज माई सेल्फ, तो क्या कहा जाएगा? लानत है हम पर, या संस्कृत में धिक्कार है हम पर। और कोई बहुत बड़ा चेंज अपेक्षित नहीं है, बहुत सरल तरीके से कहा गया चेंज द चेंजेबल। अब देखिए, भक्ति में हम यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे अंदर बदलाव प्रारंभ करते हैं, तो हमें फिर समझ में आता है कि धीरे 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 उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता, परंतु जो हमारे संपर्क में हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति बदल गया। अब मेरे अनुसार या हमारे अनुसार ये जीवन नहीं जी रहा, परंतु जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक होती है भक्ति में, तब हम देखते हैं जो हमारा मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, कि मुझे शुद्ध भक्त होना है या सभी को शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि बाकी सब शुद्ध भक्त होने चाहिए, उनके अंदर वैष्णव के 26 गुण क्यों नहीं है? जबकि हमारे अंदर दो भी नहीं होंगे। और कई बार जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे अंदर अगर वैष्णवों के दो गुण हैं, तो हमें लगता है कि बस ये दो गुण हमें किसी और में दिखते नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वो हमें अपने आप में दिखता है कि हमें वो दो गुण किसी और में दिखते ही नहीं है। उल्टे वो दो गुण का अभाव दिखता है दूसरों में। तो नीति शास्त्र में एक उदाहरण दिया गया है कि ये जो हमारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो उदाहरण ये दिया है कि मान लो एक सड़क है जिस पर बहुत कंकड़ है, और आपको चलना है उस सड़क पे, कंकड़ भरे सड़क पर आपको चलना है। तो एक व्यक्ति क्या करता है कि पूरी सड़क के ऊपर एक रबर का कारपेट डालता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, रबर की चप्पलें पहन लेता है। दोनों में रियलिस्टिक या रीजनेबल या बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसने रबर की चप्पल पहन ली। तो नीति शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कि हम निकलते हैं कि पूरा विश्व कंकड़ से मुक्त होना चाहिए, वो सड़क के समान है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि अब हम ये रबर का कारपेट डालेंगे, जहां जहां मुझे चलना होगा सड़क पर मैं ये रबर का कारपेट डालते डालते चलूंगा। तो लेकर घूम रहा है रबर का कारपेट सब जगह, जहां पर भी चलना है पहले रबर का कारपेट डालता है। तो हमें हंसी आ रही है इस व्यक्ति के ऊपर। ध्यान से कई बार देखा जाए तो हम ही होते हैं वो व्यक्ति, कि ये मेरी तरह क्यों नहीं काम कर रहा, या ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचता। जब भी हम भक्तों के संग में हर एक भक्त से ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचता, हम रबर का कारपेट लेके घूम रहे हैं। परसों ही मैं सुबह जपा के समय अपने पार्किंग का जो प्लॉट है वहां पर चल रहा था, तो मैंने देखा चलते चलते एक कंकड़ वो मेरे चप्पल में अंदर आ गया। तो मैं प्रयास कर रहा था, वो कंकड़ बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे लगा चलते चलते निकल जाएगा, नहीं निकला वो कंकड़। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था कि देखो इस प्लॉट पर कितने कंकड़ हैं, और ये सारे कंकड़ों के ऊपर मैं चप्पल पहनकर जो चल रहा हूं, एक भी कंकड़ मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ये सारे कंकड़ मिलकर भी मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये चप्पल के बाहर है या जूते के बाहर है। परंतु इतने सैकड़ों कंकड़ों में से एक कंकड़ यदि जूते के अंदर आ जाए तो दहशत मचा देता है ना। तो ये दो पैसे का रियलाइजेशन आया मुझे। रियलाइजेशन ये कि यदि आपने आपके अंदर का सिस्टम रिपेयर कर लिया तो बाहर की दुनिया के जितने भी कंकड़ हैं वो आपको प्रभावित नहीं कर सकते। परंतु आपके अंदर एक सिस्टम के अंदर एक कंकड़ कहीं चुभ रहा है तो वो आपको ठीक से चलने नहीं देगा भक्ति में। तो देखिए, चेंजिंग द चेंजेबल, अब उसके लिए हमें पेशेंस की आवश्यकता है, क्योंकि इतने समय से हमने बहुत अथक प्रयास कर हमारे जीवन को ऐसा बना लिया है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको लगता है कि नामुमकिन है, मैं बदलना नामुमकिन है। और फिर थोड़ा बदल जाते हैं तो हमें लगता है कि ये भक्त बदलना नामुमकिन है। फिर पहले नम्रता होती है कि मैं बदलना नामुमकिन है, फिर यदि भगवान की कृपा से थोड़ा बदलाव अगर आ जाए हमारे अंदर तो हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि हम फिर दूसरों को देखकर कहते हैं कि ये कदापि नहीं, सवाल ही नहीं, वो भी इस जन्म में, मेरे जीते जी। हाँ, हो सकता है कि मेरे साथ अगर थोड़ा रहे उठे बैठे तो यहां पर हम देखें तो रेसिप्रोकल है। क्या चीज रेसिप्रोकल है? ये जो चेंजिंग द चेंजेबल बहुत रेसिप्रोकल है कि जब हम हमारा फ्री विल यूज करते हैं, जैसे अक्सर हम देखते हैं गृहस्थों के घरों में जब पहली दफ़ा वो मंदिर आते हैं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, धीरे धीरे फिर उनके घरों में थोड़ा थोड़ा जो चेंजेबल है वो चेंज कर सकते हैं घर के अंदर, कि टीवी कहाँ था उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, उसके बदले अल्ट्रा आ जाता है, चेंजेबल है, इसको कहते हैं चेंज द चेंजेबल, वो लोकेशन अंदर चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं जस्ट रीस्ट्रक्चरिंग योर हाउस, शुरुआत उससे, फिर और क्या चेंजिंग द चेंजेबल में, जैसे उठने का समय, मंदिर में आने के बाद समझ में आता है कि सुबह उठना चाहिए, तो धीरे धीरे ये भी डुएबल है, चेंजिंग द चेंजेबल, कि वो एक चेंज कर सकते हैं 9 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 6 बजे, 5 बजे फिर मंगल आरती भी आना शुरू कर देते हैं। वो बात अलग है कि बहुत वर्षों बाद फिर वो मंगल आरती जो है वो हमें ऐसा लगता है कि ये अब मेरे लिए नहीं है। एक समय था जब ये मेरे लिए मंगल आरती थी, बाकियों को भी जगह देनी चाहिए खड़े रहने के लिए, नए जो आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, फिर किचन के अंदर इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं, है ना, कांदा लहसुन की जो टोकरी है वो खाली हो जाती है, उसके बाद केवल बटाटे होते हैं अभी उसमें। चेंजिंग द चेंजेबल है कि नहीं, कि अब जब पक रहा है तो भगवान को भोग लगने के बाद ही चखना है, नहीं तो पकते समय चखना सब कुछ चलता रहता था पहले, वो भी डुएबल है, काउंसलर बता देता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले उसको भोग लगाइए, बाद में उसको चखिए, अच्छा चले, अंदाज आ जाता है। पहले मुश्किल क्या था कि कैसे आएगा अंदाज कि उसमें नमक कितना डाला है, शक्कर कितनी डाली है, लेकिन जब हम सिंसियर होते हैं तो परमात्मा अंदर से उसका क्वांटिटी बताते हैं कितना नमक डालना है। देखो परमात्मा कितने डिटेल्स में जाके हेल्प करते हैं कि नमक का क्वांटिटी भी अंदर से बता देते हैं कि बस इसे ज्यादा मत डालना। अब मैं इसको रेसिप्रोकल क्यों बोल रहा हूं, जब फ्री विल को हम यूज करते हैं हमारे चेंजेबल को चेंज करने में, तो वो जो चेंज या वो बदलाव जो आता है वो बदलाव हमारे फ्री विल को चेंज करता है। फ्री विल से आपने चेंज लाया और फिर वो चेंज जो है आपके फ्री विल को चेंज करता है। कितना साइंटिफिक है भक्ति का प्रोसेस, यहां पर हम कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। कहां पर नहीं कहा गया है कि अंधे होकर भगवान पर विश्वास रखो, नहीं, आप इसको आजमाओ, पुट इट इन प्रैक्टिस, और हर एक भक्त का ये अनुभव है कि हम हमारी स्वेच्छा को सही दिशा में जब लगाते हैं तो बदलाव आता है हमारे अंदर। जैसे एक प्रामाणिक गृहस्थ ने अपने घर में बदलाव लाया, जो जो चेंजेस मैंने बताए ये सारे चेंजेस उसने अपने घर में लाए, तो अब क्या होता है कि वो सारे जो चेंजेस हैं उसने फ्री विल यूज कर लाए, अब वो चेंजेस एक माहौल बन गया जिसमें वो रहता है वो गृहस्थ, और वो जो माहौल है वो माहौल, वो जब गृहस्थ घर के बाहर जाता है तो उसके फ्री विल पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनकर जाता है, कि वो अपना फ्री विल घर के बाहर जहां पर वो माहौल नहीं है वो वैसा माहौल उसको क्रिएट करता है। फिर फ्री विल ब्रिंग्स अबाउट द चेंज एंड द चेंज चेंजेस द फ्री विल। जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर यदि आपने देखा होगा, वहां पर वृंदावन फॉरेस्ट का निर्माण राधानाथ महाराज ने किया। मंदिर के पीछे एक वृंदावन फॉरेस्ट है, बहुत सुंदर गार्डन, पूरा वृंदावन का रेप्लिका जैसे वहां पर बनाया। वो जगह पहले आस पड़ोस की जो बिल्डिंग है वो सब अपना कचरा वहां पर डाला करते थे। तो महाराज एक दफा सब ब्रह्मचारी को बुलाए और महाराज ने सब ब्रह्मचारी को दिखाया। महाराज कहे कि चौपाटी, ये जो साउथ बॉम्बे का एरिया है, स्क्वायर फीट क्या है रेट यहां का? महाराज को कहा कुछ ब्रह्मचारी जो जानते थे कि महाराज 60,000 पर स्क्वायर फीट। तो महाराज दिखाए कि 60,000 पर स्क्वायर फीट का रेट साउथ बॉम्बे का, और इतना बड़ा एरिया केवल डंपयार्ड या गार्बेज के लिए निकाल रखा है। तभी हमें समझ में आया कि सोचो कचरा डालने के लिए कि भक्त रहना चाहते थे लेकिन कचरा रह रहा है वहां पे 60,000 पर स्क्वायर फीट में, सड़ा हुआ कचरा, उसको सौभाग्य मिल रहा है वहां पे रहने का। तो महाराज ने फिर हम सबको कहा कि ये पूरी जगह को हमें वृंदावन बनाना है। बहुत वो सैद्धांतिक बात महाराज ने कही कि हम सब का हृदय भी वो गार्बेज डम के समान है, उसको वृंदावन बनाना है। जैसे महाप्रभु ने कहा मोर मन वृंदावन, उसको वृंदावन बनाना। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। वो सब फावड़ा वगैरह लेकर पहले तो पूरा वो गार्बेज निकाला और फिर धीरे धीरे, अभी अगर आप वहां पर देखो पहले केवल कौवे आया करते थे, अब वहां पर एक भी कौवा नहीं आता। वहां पर तोते, फिर वो मैना और अलग अलग प्रकार के सुंदर पक्षी आते हैं, कोयल इत्यादि, एक भी कौवा नहीं आता। तो इसके विषय में भी मैं सोच रहा था कि महाराज ने वो जो कचरा कुंडी जिसको बोलोगे कि उसे वृंदावन फॉरेस्ट बना दिया, और फिर बदले में वृंदावन फॉरेस्ट ने दिया क्या चौपाटी के रेसिडेंट्स को, ये सुंदर पक्षी रेसिप्रोकल। सो व्हेन यू चेंज द चेंजेबल द रिजल्टेंट चेंज विल चेंज यू। ये है भक्ति मैथमेटिक्स। आई विल रिपीट, व्हेन यू चेंज द चेंजेबल द रिजल्टेंट चेंज विल चेंज यू। और ये आदान प्रदान जो है, ये भक्त भक्ति भगवान के बीच का जो आदान प्रदान है, ये नित्य रूप तक चलता रहता, नित्य काल तक चलता रहता। अब इसके पश्चात हमने, मेरे ख्याल से इसकी चर्चा नहीं की अभी तक, चेंजिंग द चेंजेबल तो ठीक है, फिर एक स्तर आता है, एक प्लेटफॉर्म आता है भक्ति में, द अनचेंजेबल, उसको कैसे डील करें। और उसकी भी लिस्ट बहुत लंबी होती है। एक बेसिक नेचर होता है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हम सब का एक बेसिक नेचर होता है, और वो बेसिक नेचर ऐसा है कि उसे हमें डवटेल करना है, भगवान की सेवा में परिणित करना है। हाँ, अगर वो टोटल ही अनएक्सेप्टेबल है तो वो जो लास्ट मुद्दा है वो उस कैटेगरी में जाएगा। परंतु एक्सेप्टेबल है लेकिन अनचेंजेबल है। तो ये जो कार का ए है, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। एक बार एक भक्त एक दूसरे भक्त का कंप्लेन लेकर आए थे मेरे पास, तो वो एक के बाद एक के बाद एक कि प्रभु आपको मालूम ही नहीं है ये जो डिवोटी है, ये डिवोटी के अंदर कितनी खामियां हैं, ऐसे एक के बाद एक। मैंने कहा आप डिवोटी भी बोल रहे हैं उनको? हाँ हाँ, वो तो बोलना पड़ेगा ना, अभी क्या। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ नहीं होना है इनका, इतने वर्ष हो गए नहीं बदलने वाले, होपलेस केस है। तो उन्होंने उदाहरण दिया प्याज का, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया। बोला जैसे प्याज होता है, प्याज को आप छीलते रहो छीलते रहो छीलते रहो छीलते रहो, अंदर वही निकलेगा जो पहले छिलके में निकला था। पहले छिलका भी आपको आंसू दिलाता है, और अंदर छीलते रहो तो आखिरी छिलका भी आंसू दिलाएगा। तो एग्जाम्पल के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया इनका केस। तो मैंने कहा बट प्रभु जी हम प्याज तो खाते नहीं। तो ये जो एक भगवान कहते हैं निग्रहम किम करिष्यति, कि एक जो हमारा बेसिक नेचर है, जैसे पांडवों के अंदर उन सब का बेसिक नेचर था, भीम इनका एक बेसिक नेचर था, युधिष्ठिर महाराज उनका एक बेसिक नेचर था, अर्जुन उनका एक बेसिक नेचर, बलराम जी उनका बेसिक नेचर, तो सबका बेसिक नेचर। और ये जो बेसिक नेचर है, कई बार हमको लगता है कि सब मेरे तरह एक जैसे क्यों नहीं है, सोच विचार वाले, ये अलग प्रकार का मायावाद है, सब मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, ये भी एक प्रकार का मायावाद है। क्योंकि भगवान ने अनेकवाद दिया है, अनेकवाद मतलब प्लूरैलिटी, प्लूरलिज्म, ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज्म, अनेकवाद, कि जब इतने सारे डिवोटीज वो अपने विभिन्नताओं के साथ भगवान की सेवा करते हैं तो वो भगवान को उसमें प्रसन्नता मिलती है। अब देखिए, क्या भगवान सख्ती बरत कर युधिष्ठिर महाराज को नहीं कह सकते थे अरे मैं बोल रहा हूं बोलो, अश्वत्थामा मर गया, या भीमसेन के ऊपर सख्ती बरत कर अगर जो भी उनको कराना था, नहीं, उन्होंने उनको वो फ्रीडम दिया कि उनका जो अनचेंजेबल नेचर है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, एक्सेप्टिंग दैट। अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कब आते हैं? व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट द अनचेंजेबल नेचर ऑफ द अदर पर्सन व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो या ब्रह्मचारी आश्रम में, दोनों आश्रमों में प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जब ये सेकंड प्रिंसिपल जो है व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। तो मैं दोनों के उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि हाल ही में दो केसेस आए मेरे पास, एक गृहस्थ का केस और एक ब्रह्मचारी का केस, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाला केस। तो एक ब्रह्मचारी, मैं जब बॉम्बे में था तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, मतलब वो हाल ही में ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी बताओ ये ब्रह्मचारी आश्रम में सब कुछ ठीक चलते रहेगा, मतलब आने वाले 25 साल 30 साल 40 साल क्या कैसे हम उसको एकदम ठीक कर ले। मैंने कहा मतलब अभी से 25 साल तक का आपका ब्रह्मचर्य जीवन, उसके ऊपर स्त्री आपको अभी से मारनी है? उसने कहा प्लानिंग तो अच्छे से करना पड़ेगा ना। बहुत बार हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी बहुत वर्षों बाद उनको अकेलापन महसूस होता है, उनको लगता है 25 साल बाद उनको लगता है ये मैंने क्या किया। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, या मैं कहां पहुंचा, कहीं पहुंचा कि नहीं। लोग बोलते हैं पहुंचा हुआ साधु है। लेकिन मुझे लग रहा है मैं कहीं नहीं पहुंचा। तो उसको इस्कॉन के लैंग्वेज में कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन का मिड लाइफ क्राइसिस। अब न तो पीछे जा सकते हैं क्योंकि इतने वर्ष हो गए, 20 साल हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम में, अब आगे कहां, आगे अंधेरा पीछे खाई। तो ये जो वो पूछ रहे थे, अभी उन्होंने ज्वाइन ही किया था, तो ज्वाइन करते सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आगे का जो 25 साल का 30 साल का कुछ आपने ऐसा प्लानिंग किया था जब आप ज्वाइन किए थे। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, आप ड्राइविंग जानते हैं? ड्राइविंग? बोले हाँ ड्राइविंग जानता हूं मैं। तो मैंने बोला जब आप ड्राइविंग के लिए सुबह निकलते हैं, कभी भी ड्राइविंग के लिए आप बाहर निकलते हैं, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो एक ऐसे ड्राइवर का क्वेश्चन है कि जो ड्राइविंग करने से पहले, वो भी बंबई शहर में ड्राइविंग करने से पहले, वो ये पता लगाना चाहता है कि मैं चौपाटी से जुहू जो ड्राइव कर कर जाऊंगा तो सारे सिग्नल ग्रीन होने चाहिए, पहले गाड़ी मेरी बाहर निकालने से पहले सारे सिग्नल ग्रीन करो, फिर मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। सो योर क्वेश्चन इज एज रिडिकुलस एज अ ड्राइवर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट फर्स्ट टर्न ऑल द सिग्नल्स ग्रीन देन ओनली आई विल ड्राइव। कभी होता है ऐसा? हाँ, कई बार अगर सौभाग्य हो तो ये सिग्नल दूसरा सिग्नल दोनों ग्रीन मिल जाएंगे आपको, और कभी कभी आपको दिख रहा है कि वो ग्रीन है, आप जब तक पहुंचे आपके लिए अब रेड हुआ है ना, और फिर काउंटडाउन शुरू होता है 75 से 75 74। तो जिंदगी ऐसी है, कभी दो तीन सिग्नल एक साथ ग्रीन मिलेंगे आपको, कभी कभी हर सिग्नल रेड मिलेगा, और कभी कभी सिग्नल ग्रीन है, आगे वाला जा नहीं रहा है, उसकी गाड़ी अटक गई। हाँ, कैसा लगता है आपको इंडिया में स्पेशली? ग्रीन हो गया सिग्नल लेकिन वो आगे वाला निकल नहीं रहा है, या आप गलत लेन में चले गए, वो इधर जाने के सिग्नल के लिए वेट कर रहा है, आपको सामने जाना है, उसका यहां का सिग्नल रेड है राइट का। तो लाइफ इज लाइक दैट, कि पहले से यदि हम ये डिमांड करें कि मेरे सार भगवान के सामने, हम लोग अनस्पोकन डिमांड हमारा होता है कि भगवान पहले सारे सिग्नल ग्रीन कर दो, फिर देखो मैं कैसे माला करता हूं आपकी, फिर आप थक जाएंगे सुनते सुनते, इतना महामंत्र करूंगा मैं। तो ही मैंने कहा कि दिस काइंड ऑफ डिमांड इज अनरीजनेबल। तो फिर एक गृहस्थ ने क्वेश्चन पूछा इसी प्रकार का कि कैसे गृहस्थ आश्रम के अंदर हर एक दिन वैकुंठ का हो। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना कि वो जब आते हैं घर पे तो उनको हर एक शाम ऐसी लगती है कि वो गोलोक वृंदावन में प्रवेश करे, तो वो कैसे हो सकता है। तो सिमिलर उनका भी एक गृहस्थ का ये क्वेश्चन था, तो उनके लिए मैंने एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कि गर्मी का मौसम है, आम का मौसम है, आपने आम की टोकरी खरीदी, पहले आते ना पूरे इतनी बड़ी टोकरी पूरे आम की, आपने आम की टोकरी ली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर एक आम मीठा होना चाहिए, जैसे कि हर एक दिन आपका हनीमून वाला दिन होना चाहिए या वैकुंठ का, जो भी इंडिविजुअल ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। एक बार ऐसे एक शादीशुदा व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते करते भगवान प्रकट हो गए, तो वो भगवान से मांगता है कि भगवान मुझे आप ऐसा वर दो कि मेरे घर से स्वर्ग एक प्राइवेट रोड मेरे लिए, ताकि मैं मेरे घर से स्वर्ग आना जाना करता रहूं जब भी मुझे जाना है वीकेंड पे, एक सड़क बना दो मेरे और स्वर्ग के बीच एक सड़क बना दो। तो भगवान बोले पागल हो गया है, असंभव है। अच्छा असंभव, कोई और वर मांगो, भगवान ने पूछा। ठीक है ऐसा करो, मेरी बीवी को समझदार बना दो, मेरे जो शादीशुदा प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर दो, हाँ बच्चों को सब जो एकदम ओबीडियंट बना दो, ये सब कुछ। तो भगवान बोले अच्छा अच्छा वो सड़क की बात कर रहा था ना, वो क्या वन वे टू वे कैसा चाहिए सड़क, वो बोला। भगवान भी बोल दे कि सड़क आसान है बनाना। तो ये डिमांड करना कि ब्रह्मचारी आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में कि हर एक ब्रह्मचारी एकदम मीठा आम की तरह होना चाहिए, या गृहस्थ आश्रम में हर एक दिन उस मीठे आम की तरह होना चाहिए, अनरीजनेबल है। इसको बोलते हैं कॉरपोरेट कल्चर। हाँ असेंबली लाइन में सब प्रोडक्ट एक जैसे निकलते हैं ना, वैसे नहीं होगा। तो वही ड्राइविंग का उदाहरण, अगर उसका दूसरा पहलू देखें तो आप ड्राइव करने के लिए निकले हो, बहुत से पॉट होल्स होंगे। एक और उसके लिए इंग्लिश में इंटरेस्टिंग शब्द है मैन होल, कि वो हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए और हमें सिखाने के लिए पॉट होल्स या मैन होल्स। तो आप जब ड्राइव कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करो कि पूरा रोड एकदम मक्खन की तरह हो, मक्खन की तरह रोड हो, नहीं। हमें ड्राइव करते समय अनइवन रोड्स मिलेंगे, हमें हमारी ड्राइविंग को उनसे बचते हुए करना है। और कितना भी बचो, विशेष रूप से इंडिया में कितना भी बचो, ऐसे पॉट होल्स आएंगे कि यहां से बचने जाओगे तो ये टायर जाएगा गड्ढे में, ये टायर को बचाओगे कोई चारों में से कोई तो एक पहिया गड्ढे में कहीं ना कहीं जाने वाला है। वो ही है इस संसार में जो रिलेशनशिप्स है उसका सिनेरियो, कि आप एक चीज चेंज करने जाओगे दूसरी चीज गड्ढे की तरह, या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, सब कुछ ठीक है स्पीड ब्रेकर आ गया, आपको अभी अच्छी से मक्खन की तरह चलाना है, इतने सारे स्पीड ब्रेकर आ गए, रुक जाओ सब कुछ ठीक है, स्पीड ब्रेकर नहीं, पॉट होल कुछ नहीं है, एक बैल खड़ा है बीच में, ले क्या करेगा, मारे जा रहे हॉर्न, मारे जा रहे, मारते जा हॉर्न, मेरे को ना तो कोई टिकट काटने वाला है, कोई कोई ट्रैफिक पुलिस मुझे कोई पकड़ने वाला है, कर ले जो करना है। तो ये है, ये भौतिक संसार जो है ना, ये इस प्रकार से बनाया गया है कि हम यदि इसे जितना ज्यादा बाह्य रूप से ठीक करने जाएंगे हम और परेशान होंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या कह दिया, ताम स्थितिक्षस्व भारत। ताम स्थितिक्षस्व भारत मतलब एक्सेप्ट दी अनचेंजेबल, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, ये सारे ड्यूअलिटीज जो हैं ये सब अनचेंजेबल। और भगवान कहे मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए सब चेंज, तुम इस भ्रांत धारणा में मत रहना। और फिर जो अनएक्सेप्टेबल है ये कार प्रिंसिपल में, उसको हमें बाहर निकालना, रिमूव दी अनएक्सेप्टेबल। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज बहुत थिन लाइन होता है इसके अंदर। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर हम एक समझौता का जीवन जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड जीवन जीते हैं। डेफिनेटली अ डिवोटी शुड बी फ्लेक्सिबल, बट इफ ही स्टार्ट्स कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रिंसिपल्स इन द नेम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। जैसे कि शूर्पणखा, जब वो यहां पर आई तो यहां पर राम लक्ष्मण सीता वो लोग शांति से अपना जीवन यहां पे बिता रहे थे, वन का जीवन। और रामचंद्र जी को नासिक इतना अच्छा लगा कि रामचंद्र जी ने निर्णय ले लिया था कि बस आगे का अपना जो वनवास है वो यहीं पे बिताएंगे, यहां से आगे कहीं नहीं जाएंगे, इतना अच्छा उनको लगा। वो तो शूर्पणखा ने आकर जो भी कुछ उपद्रव किया। तो अब देखिए शूर्पणखा वो शुरुआत में जब आई तो राम और लक्ष्मण वो हंसी मजाक में शूर्पणखा को ले रहे थे, है कि नहीं। वही एक प्रसंग है जहां पर रामचंद्र जी जैसे गंभीर अवतार वो विनोद किए, जोक किए। रामचंद्र जी बहुत गंभीर अवतार फेमस है उनका एक जो डिस्पोजिशन है। तो शूर्पणखा के साथ जब उन्होंने थोड़ी हंसी मजाक की तो उनको लगा कि ये ऐसे ये भी हंसते हंसते चली जाएगी, परंतु वो किसी हंसी मजाक के मूड में नहीं थी शूर्पणखा, क्योंकि उसके अंदर वो राक्षसी प्रवृत्ति थी और राक्षसी जो प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके हंसी मजाक का डेफिनेशन अलग होता है। और वो बहुत ही घटिया किस्म का होता है। जैसे हम देखते हैं कि डिवोटीज का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिविलाइज्ड हो जाता है और जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड होता है। तो जब वो पॉइंट पर आई शूर्पणखा, कौन से पॉइंट पर, अनएक्सेप्टेबल, तब फिर रामचंद्र जी ने आदेश क्या दिया लक्ष्मण को, नाउ रिमूव द अनएक्सेप्टेबल। तो वही प्रभु श्री राम जो कि अपने हृदय में इतनी कृपा रखते थे कि एक दफा उनके पैरों में तलवों में एक कांटा चुभ गया चलते चलते, तो सीता देवी वो कांटा निकालना चाहती थी तो प्रभु श्री राम ने कह दिया कि नहीं, इस कांटे ने मेरे चरणों की शरण ग्रहण की है, जो भी मेरे चरणों की शरण ग्रहण करता है मैं कभी उसे अलग नहीं होने देता। और जब सीता देवी ने यह सुना तो सीता देवी ने क्या किया, सीता देवी अभी प्रभु श्री राम के सामने चलने लगी, तब तक वो उनके पीछे चलती थी। उनकी अर्धांगनी होने के नाते वो उनके पीछे चलती थी। अब वो आगे चलने लगी तो रामचंद्र जी पूछे कि तुम अचानक आगे क्यों चलना शुरू कर दी? तो उन्होंने कहा कि जितने कांटे और आगे आएंगे उन्हें मेरे पैरों पर चुभने दो। तो वो प्रभु श्री राम जो कांटों को भी शरण दे रहे थे, परंतु सूर्पणखा ने जो व्यवहार किया, क्योंकि वो सीता देवी के ऊपर प्रहार करने निकली, जब तक वो प्रभु श्री राम के साथ जो भी घिनौना घटिया आदान प्रदान कर रही थी, प्रभु श्री राम उसे हंसी मजाक में माफ कर रहे थे। परंतु जैसे ही उसने सीता देवी के ऊपर प्रहार करना चाहा, अनएक्सेप्टेबल, वैसे ही भक्त के ऊपर जब कोई लांछन लगाता है तो प्रभु श्री राम उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? रिमूविंग दी अनएक्सेप्टेबल, ये व्यवहार करते हैं। एक और उदाहरण अगर मैं दूं, विभीषण, रामायण से एक और उदाहरण विभीषण इनका, कि विभीषण वो कब तक रावण को सहन करते गए? जब तक कि रावण अनएक्सेप्टेबल न बना, या उनके लिए रावण के साथ रहना वो अब रास नहीं आ रहा था, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो विभीषण, उन्होंने ट्राई किया कि रावण को मैं बदल सकूं, लेकिन जब वो पॉइंट आया कि ही इज नॉट जस्ट अनचेंजेबल, ही इज अनएक्सेप्टेबल, दोनों कॉम्बिनेशन रावण का, अनचेंजेबल अनएक्सेप्टेबल, सो दैट अनचेंजेबिलिटी विच इज अनएक्सेप्टेबल शुड बी रिमूव्ड। जैसे कि भगवान शांतिदूत बनकर गए, चेंज करने का प्रयास किया दुर्योधन को, लास्ट मिनट तक चेंज करने का प्रयास किया, परंतु जब दुर्योधन बाज नहीं आया अपनी हरकतों से, तब फिर भगवान बोल कर गए दुर्योधन को कि दुर्योधन नाउ यू आर गोइंग ओवरबोर्ड, नाउ यू हैव टू बी रिमूव्ड। और श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में लिखते हैं, कृष्णा वॉज लाइक अ फार्मर, व्हेन अ फार्मर इज कल्टिवेटिंग अ लैंड एंड व्हेन ही सीज दैट देर आर सम प्लांट्स विच आर अनएक्सेप्टेबल इन द फील्ड, द फार्मर अप्रूट्स देम। सो कृष्णा वॉज टॉलरेटिंग दुर्योधन टिल द पॉइंट ही बिकेम अनएक्सेप्टेबल। तो अब हमारी भक्ति में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें, कि हमारी भक्ति में बहुत सारी चीजें हम अकोमोडेट करते रहते हैं, हम बहुत अकोमोडेटिंग खुद के लिए हो जाते हैं, इसको भी उसको भी, फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर, कि हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो। परंतु फिर एक पॉइंट आता है कि जब वो गुरु साधु शास्त्र के विरुद्ध, जैसे कि प्रभुपाद के कुछ शिष्य प्रभुपाद को कृष्ण बोलने लगे, तो ये प्रभुपाद ने जब सुना कि प्रभुपाद जिस मायावाद का खंडन करने के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं के शिष्य प्रभुपाद को कृष्ण बोल रहे हैं, दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल, प्रभुपाद डिडंट टॉलरेट दैट। तो हमारे अंदर ये इंटेलिजेंस और सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि कहां हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अनएक्सेप्टेबिलिटी में परिणित हो रही है, उसको हम चेक कर सकें, है कि नहीं। और हाँ, जैसे कि बोला जाता है कि पेरेंटिंग के विषय में, कि पेरेंटिंग में कि पेरेंट्स को सख्त भी होना चाहिए और उनको छूट भी देनी चाहिए बच्चों को। एकदम सख्ती बरत के रखोगे तो रिवोल्ट हो जाता है, और एकदम उनको खुला छोड़ोगे तो वो तो आपको और आपके पूरे घर को बेच खाएंगे। तो इसलिए ये सीखना, भक्ति के अंदर श्लोक सीखना बहुत आसान है, भक्ति शास्त्री पास करना बहुत आसान है, कीर्तन में सबसे नई नई मेलोडीज गाना भी बहुत आसान है, कुकिंग करना, डीटी वर्शिप करना, ये सब कुछ बहुत आसान है। सबसे कठिन साधना भक्ति में यदि है तो वो है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को प्राप्त करना। ये जो एक क्वालिटी है, ये क्वालिटी बहुत ज्यादा, मनुष्य तो दुर्लभ हैं और मनुष्यों में कृष्ण भक्त और भी दुर्लभ हैं, और कृष्ण भक्तों में मैच्योर्ड कृष्ण भक्त तो सबसे दुर्लभ है, द मोस्ट रेयर स्पीशीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट नाउडेज। तो इसलिए ये जो कार प्रिंसिपल को यदि संक्षिप्त रूप में हम समझने के लिए जाएं, तो एक है पोजिशन और एक है डिस्पोजिशन। तो इसके अंदर अर्जुन का उदाहरण कि अर्जुन भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन अपनी पोजिशन चेंज करना चाहते थे। अर्जुन वॉन्टेड टू चेंज हिज पोजिशन। क्या पोजिशन, अर्जुन की पोजिशन क्या थी? एक क्षत्रिय, और उनके ऊपर उत्तरदायित्व था एज अ क्षत्रिय, उनको वहां पर रणभूमि पर क्या करना है, और ये चयन उन्होंने ही किया था। जबरदस्ती भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा था, अर्जुन ने वो चयन किया। और फिर अर्जुन जब भ्रमित हुए प्रथम अध्याय में, अर्जुन अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते, तो पूरी भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन वांटेड टू चेंज हिज पोजीशन, रेस्ट ऑफ द 17 चैप्टर्स कृष्णा चेंज्ड अर्जुन्स डिस्पोजिशन। तो 18 अध्याय भगवद गीता के हैं क्या? अर्जुन्स पोजीशन चेंजिंग इनटू व्हाट कृष्णा वांटेड, अर्जुन्स डिस्पोजिशन। और दूसरा यदि मुद्दा हम लें, कंडीशन वर्सेस कॉन्शियसनेस, तो इसमें उदाहरण है प्रभु श्री राम का कि उनकी कंडीशन रातों रात किस प्रकार की हुई। प्रभु श्री राम की कंडीशन रातों रात राजा से रंक, जो बोलते हैं कि राजा बनने वाले थे और रातों रात वनवास 14 साल का, मतलब इतना सडन चेंज किसी के कंडीशन में। यदि अभी किसी के कंडीशन में इतना सडन चेंज आ जाए तो हार्ट अटैक निश्चित है। तो रामचंद्र जी ने इसको हैंडल कैसे किया, इतना सडन कंडीशन में चेंज कॉन्शियसनेस। और बहुत सुंदर ये प्रसंग है रामायण में कि जब कौशल्या को अभी तक नहीं पता था कि कैकेयी ने क्या किया है, और कौशल्या से रामचंद्र जी अब सब कुछ सुनकर आ गए, स्वीकृति भी दे दी उन्होंने कि ठीक है 14 वर्ष वनवास, मैं निकल रहा हूं कल। और अपनी मां कौशल्या से मिलने आए तो कौशल्या को लगा कि कल के राज्याभिषेक के लिए मुझसे आशीर्वाद मांगने आ रहे। तो प्रभु श्री राम कौशल्या को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं
यही चीज बहुत सीखने योग्य है, जब हमारे साथ नाइंसाफी होती है हम कैसे प्रस्तुत करते हैं और रामचंद्र जी कैसे प्रस्तुत करते हैं, और कई बार हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होती है फिर भी हमको लगता है कि नाइंसाफी हो रही है। यहां पे वास्तविक रूप में प्रभु राम के साथ नाइंसाफी हो रही थी, वो कौशल्या को कहते हैं कि आज मुझे हमारे पिताश्री ने मुझे केवल अयोध्या का नहीं जितने सारे वन हैं भारत में सारे वनों का राजा बनाया है। तो कौशल्या को ये एनक्रिप्टेड बात समझ में नहीं आई। तो देखो उन्होंने रामचंद्र जी ने क्या चेंज किया, कंडीशन चेंज नहीं किया, सोच बदली। तो हमें क्या बदलना है, हमारा पोजीशन नहीं बदलना, हमारी कंडीशन नहीं बदलनी, वो तो बदलती रहेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। अभी अगर हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम सोच रहे हैं कि हाँ मैं सारे पैसे जो हैं उसको बैंक में रख के मैं अब इत्मीनान से भक्ति करूंगा, हाँ उसको मैंने एफडी में डाल दिया है सब कुछ, अब इत्मीनान से मैं भक्ति करूंगा, रोज मंगल आरती, हाँ भक्ति शास्त्री और सेवा और ये सब, वो किसी ने बैंक ही लूट लिया। तो कंडीशन हमको लग रहा है कि अभी मैं बहुत स्वस्थ हूं, हाँ एकदम मैं ऐसी सेवा करूंगा कि सभी को इंस्पिरेशन दूंगा मैं। कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर डॉक्टर ने बता दिया भाई आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डेंजर से ऊपर जा रहा है, आपके बैक में प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आपके इसमें प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स आ गए, वापस से उस पर ब्रेक लग जाता है। तो कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं है, जैसे रामचंद्र जी ने अपनी सोच बदली, रिश्ता वही सोच नहीं है ना, बोलते ना, तो रिश्ता वही होगा, आपके पति पत्नी नहीं बदलने वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है अभी वो सालों साल कई बार 7 जन्म तक विद बोनस मिलेगा। तो उसके अंदर आपको सोच बदलनी है। जैसे एक पत्नी डॉक्टर के पास गई, अभी गई है खाली, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने पूछा पत्नी को हाउ इज योर हेडेक, तो कहती है ही इज आउट ऑफ टाउन। सो समटाइम्स योर हेडेक विल बी आउट ऑफ टाउन, समटाइम्स योर हेडेक विल बी इन टाउन विद इन द हाउस, नॉट जस्ट इन टाउन बट विद इन द हाउस, एंड समटाइम्स वी विल बिकम हेडेक, है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये जो कार प्रिंसिपल इतना प्रैक्टिकल है, चेंजिंग द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, रिमूव द अनएक्सेप्टेबल। तो मैं आज के हमारे इस क्लास का अंत एक इंसिडेंट से करना चाहूंगा। मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था तो वहां पर एक बहुत मेरा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हुआ। तो हुआ ऐसा कि मैं DLTA ग्राउंड्स जाने के लिए बस स्टैंड पर था, अपने पालम बस स्टैंड पर था, तो वहां पर मैंने देखा अचानक बारिश शुरू हुई। बारिश का मौसम था तो अचानक बारिश शुरू हुई, और वो जो बस स्टैंड था, सब लोग जब बारिश होती तो बस स्टैंड का आश्रय लेते हैं, बहुत लोगों के पास छतरी नहीं होती। तो वो पूरा सीन मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अचानक बारिश हुई है, और अब ये बारिश को देखकर अलग अलग प्रतिक्रिया। तो एक बूढ़े दंपति, तो वो जो पति वो अपनी पत्नी को कहता है, मैंने कहा था निकलते वक्त छतरी ले लेना, तो मैं उनका कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। तो पति वो कह रहा है पत्नी से, मैंने कहा था छतरी ले लेना चाहिए था, देखा अभी। तो पत्नी कहती है, तो तुम ले लेते। खैर वो जो भी उनके बीच में चल रहा था। फिर एक और दो मित्र, वो लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, अरे बहुत जोर से आने वाली है शायद बारिश, देखो बादल बहुत घने दिख रहे हैं, कोई आसार नहीं नजर आ रहे बादलों के झड़ने के, तो बहुत घमासान शायद मूसलाधार बारिश होने वाली है, ट्रैफिक बहुत बढ़ने वाला है। तो यहां पर ये ट्रैफिक के विषय में सोच रहे हैं, वही बारिश ये दंपति छतरी के विषय में, वो ट्रैफिक के विषय में। एक और को मैंने देखा, वो अपना बटुआ निकालकर 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट जो गीला हो गया था उसे सुखा रहा है, उसको हिला रहा है, फूंक मार रहा है, उसको सुखा रहा है वो, ये उसका काम चल रहा था। फिर मैंने एक पिता और उसकी छोटी सी लड़की, वो लोग आ रहे थे और उनके पास छाता नहीं था, तो वो लोग भागते हुए आ रहे थे। तो जैसे वो भागते हुए आ रहे थे तो मैंने देखा कि ये दोनों, जो पिता और बेटी है उसकी छोटी सी, वो दोनों का जो हैंड पोजीशन था, उनकी हथेली का जो पोजीशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जो पिता, उसने ऐसे हथेली कर रखी थी, है ना, बारिश से अपने आप को बचाने के लिए, उसके पास कुछ भी नहीं था, छाता नहीं, कुछ भी नहीं था, तो उसने हथेली ऐसे कर रखी थी। परंतु वो जो लड़की थी, वो लड़की ने अपनी हथेली ऐसे खुली हुई थी, छोटी सी लड़की, और वो इकट्ठा कर रही थी जो वर्षा के जो बूंद हैं, बारिश की बूंदों को अपनी हथेली में इकट्ठा कर रही थी और पी रही थी, जितने भी छोटी सी उसकी हथेली, और उसमें से एक हाथ बूंद जो इकट्ठा हो रहे थे उसको लेके वो पी रही थी। और उसने अपने पिताजी को पूछा कि ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। तो मैंने जब ये दृश्य देखा, और अभी जब मुझे ये दृश्य याद आ रहा है, तो मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि भगवान की कृपा इस वर्षा के समान है। और हम देखते हैं कई बस स्टैंड पर खड़े कंप्लेन करते रहते हैं, अरे क्या ऐसा नहीं कर, वो कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, अब बहुत ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और अक्सर हम लोग जब भक्ति में आ जाते हैं तो हम लोग हमारी हथेली को ऐसे रखते हैं, परंतु जो मासूम भक्त होते हैं उस छोटी सी लड़की के समान, वो अपनी हथेली खुली रखते हैं, उस कृपा को, चाहे एक हाथ बूंद क्यों ना हो, वो उस कृपा को अपने हथेली में लाने के लिए। और वो प्रश्न पूछते हैं, उनका मासूम प्रश्न क्या होता है कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। सो द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज चेंज द पोजिशन ऑफ आवर पाम, ऐसे रखने के बजाय हमें ऐसे रखना है। और होता क्या है कि वही लड़की जो अभी इतनी मासूम है, वो जब बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके पिता उसके इस प्रश्न का उत्तर प्रामाणिकता से नहीं देंगे। और मैंने देखा वो पूछती जा रही और उसके पिता इग्नोर किए जा रहे हैं, उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। तो उसने फिर आगे चल के वो प्रश्न भी पूछना बंद कर दिया। Therefore, in English it is said that the success of a human being is not to find answers to all your questions, but to ask right kind of questions. That is the success. तो वैसे ही हम जब भक्ति में आते हैं तो जो कुछ हमें मंदिर में दिखता है, हम हथेली खुली रखकर आसमान की ओर, जैसे उस लड़की ने रखी थी, खुली हथेली से हम भगवान की कृपा वो पकड़ना चाहते हैं। परंतु जैसे जैसे भक्ति में आने के बाद जो भी दीक्षा हो जाती है, हम लोग ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, पोजीशंस मिल जाती हैं, उसके बाद फिर हमारी मासूमियत चली जाती है और फिर वही हथेली को हम ऐसे कर लेते हैं और भगवान की कृपा को आने से रोक देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती तो सारी समस्याएं, जो कृपा है वो भी समस्या लगती है। फिर भगवान यदि हमें सेवा देते हैं तो हमको वो बर्डन लगता है, वो समस्या लगती है। वही बारिश उस पिता के लिए समस्या बन गई थी और उस छोटी सी बालिका के लिए वो एक आनंद का साधन बन गई थी, वही बारिश। और दोनों में अंतर क्या था कि वो पिता बड़े होकर अपने आप को बड़ा समझकर कॉम्प्लिकेटेड बन गए थे और वो छोटी सी लड़की अनकॉम्प्लिकेटेड और इनोसेंट थी। इसलिए हाल ही में ये 3 दिन का सेमिनार हुआ तो 3 दिन के सेमिनार के पश्चात एक शख्स मेरे पास आया और उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि आप एक लाइन में कह सकते हो कि जो भी आपने आपके जीवन की उपलब्धि अब तक प्राप्त की, आप इतना प्रसन्न क्यों और कैसे हो? तो मैंने एक लाइन में, जो अब तक का थोड़ा बहुत साक्षात्कार, उनको एक लाइन में कहा, न जीने का लालच न मरने का डर, यदि ये दो चीजें आ जाए तो आपका जीवन सफल आप कर सकते हो। न जीने का लालच न मरने का डर, और ये है भक्ति में मासूमियत को बरकरार रखने का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? द कार फॉर्मूला। चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, रिमूव द अनएक्सेप्टेबल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस?
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू फॉर दिस क्लास। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा है कि फर्स्ट स्टेज तो जो था चेंज द चेंजेबल, तो आप अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें अपनाते हो भक्ति में, तो आप एक पोजीशन पे आ जाते हो, लाइक चेंज्ड पोजीशन फ्रॉम योर पास्ट प्रीवियस पोजीशंस। लेकिन आपके जो निकट जन होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो उसमें वो चेंज अभी तक आया नहीं होता है। और हम लोगों को अपने जैसे बताया कि पेशेंस रखना होता है ऑफ कोर्स दूसरों के लिए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सपोज पोजीशन नंबर 8 पे हैं तो 6 पे आ जाएं। तो आपको अपने चेंज्ड पोजीशन पे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स किया जाता है। एक्सटर्नली यू नो दैट यू हैव रीच दिस पोजीशन, बट टू कन्विंस अदर्स आपको बैकवर्ड पोजीशन पे आना पड़ता है, क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या?
हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है कि जब जिन परिवार वालों के साथ आप रह रहे हो सकता है कि वो उस स्टैंडर्ड पर ना हो। तो इसलिए भक्ति की महिमा ऐसी है, जो कि मैं बोल रहा था, प्लूरैलिटी प्लूरलिज्म, इतने इतना अनेकवाद है भक्ति के अंदर। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, कम से कम दंडवत तो कर सकते हो, कम से कम मेरे बारे में सोच तो सकते हो। तो इसलिए भक्ति के अंदर, भक्ति की जो वर्सटैलिटी है वो इतनी है कि एक मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था बहुत सालों पहले वृंदावन में, और प्रभुपाद यही जो गीता में भगवान ने कहा कि तुम अपना सर्वस्व अर्पण करो, सर्वस्व नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कर्मों से कर्म करो मेरे लिए, ये सब कुछ लेवल्स बताना। तो प्रभुपाद कहे उस लेक्चर में बहुत बहुत ही इंस्पिरेशनल बात प्रभुपाद ने कही। प्रभुपाद ने कहा कि चाहे आपकी फिजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, फैमिली कंडीशन कैसी भी हो, प्रहलाद महाराज का उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रहलाद महाराज के पिता, प्रहलाद महाराज की माता, प्रहलाद महाराज के टीचर्स, प्रहलाद महाराज जो भी उनके साथ थे, कोई भी डिवोटी नहीं था। तो फिजिकली या सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रहलाद महाराज को कोई एसोसिएशन ऐसा नहीं मिला था कि जहां पर वो सत्संग अटेंड कर सके, डीटी वर्शिप कर सके, वैष्णव की सेवा कर सके, प्रसाद खा सके, कुछ भी नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा इवन इफ यू आर इन दैट कंडीशन, नो बडी कैन एंटर इन टू योर माइंड एंड स्टॉप योर थॉट्स। Your wife, your husband, your children, your parents, they can stop you from coming to temple, but they can't stop you from thinking about the temple. That is also bhakti. The job which you are in, your boss may not allow you to spend so much time outside of your office, but your boss or whoever cannot enter into your mind and stop you. इसलिए तो मैं कल बोल रहा था कि आजकल के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, माइंड में जाके चेक करना कि इसका माइंड ठीक है कि नहीं। आप एयरपोर्ट पे जाओ, इतने सारे जो सिक्योरिटी कैमराज, हिडन कैमरा, सीसीटीवी वगैरह, ये सब क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि उनको कैरेक्टर पे भरोसा नहीं है सबके, है ना। आप अपना पासपोर्ट दिखाओ, आईडी प्रूफ दिखाओ, फिर भी वो आपको देखते रहेंगे, शक्ल दिखेंगे कि शक्ल तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही ना, उसके एक्सप्रेशन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, है ना। तो मैं यही कह रहा था, इफ यू आर नॉट वॉलंटरली ऑनेस्ट, सीसीटीवी विल मेक यू इनवॉलंटरली ऑनेस्ट। व्हाट इज ऑल दिस सीसीटीवी एंड एवरीथिंग, दे आर मेकिंग एवरीवन इनवॉलंटरली ऑनेस्ट, सो बेटर वी बिकम वॉलंटरली ऑनेस्ट। आजकल लोग चोरी करने से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि सब जगह कैमरा है। तो डर के मारे ईमानदार हो या स्वेच्छा से ईमानदार हो, ट्रॉफी आपको किस में मिलने वाली है, जब आप स्वेच्छा से ईमानदार होंगे तब। व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग शॉपलिफ्टिंग, बिकॉज देर आर सो मेनी कैमराज इन शॉप्स, दैट डजंट मेक देम ऑनेस्ट, दैट डजंट प्रूव दैट दे आर ऑनेस्ट, दे आर, इट्स फोर्स्ड ऑनेस्टी। सो दे आर ट्राइंग टू एंटर इन टू द माइंड टू सी वेदर हिज माइंड इज नॉट करप्टेड, and they can't enter, no device can enter into your mind and show what are your thoughts right now. So similarly, no one can force you to not think of Krishna, what to speak of anyone. Gopis, they are performing yoga to remove Krishna from their thoughts. That's how powerful Krishna Smaran is. So therefore, nobody can say that because of this, I cannot advance in devotional service. हमको खाली अपनी हथेली आकाश की ओर खुली रखनी है, भगवान की कृपा वर्षा के रूप में आ रही है. और भगवान की कृपा ऐसी है कि कई बार हमारे बगल वाले पर धूप है और हमारे ऊपर वर्षा, यदि हमने हथेली खुली रखी है. ओके, हरे कृष्ण. वी वर मिसिंग यू. Hare Krishna. Thank you, thank you. Yes, we all have to, even if we don't know driving, we should learn driving this car. Otherwise, we are bekar. And only this car will take us, and there is guarantee, this car is insured. Forever, for lifetime, this is insured. And it is for sure that if you learn how to drive this car sincerely, there will be no accidents. And Krishna promises that if you are willing to dedicate to drive this car, He will make all the signals green. Jai Shri Shri Radha Madan Gopal Ji Ki, Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrind Ki, गौर प्रेमानंदी. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.
इस गृह शिक्षाष्टकम प्रभु की. हरे कृष्ण. कुछ सूचना इस प्रकार से, कृपया आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रसाद है सबके लिए बाहर. आने वाले 18 तारीख को हमारा जो मंथन प्रोग्राम जो इतने समय के लिए स्थगित था करीब करीब 6 महीने से, तो उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं. तो उसके डिटेल्स जो है बुधवार